नमस्कार भारत, तारीख 20 दिसंबर, दिन बुधवार, मैं हूं आदर्श राठौर। हूथी विद्रोहियों ने यमन से सऊदी अरब पर दागी मिसाइल, अमेरिका ने ईरान पर जताया मिसाइल देने का शक।
While we don't yet have sufficient insight into this particular attack, it bears all the hallmarks of previous attacks using Iranian-provided weapons.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में पिछले सत्र में मिले कथित विस्फोटक को लेकर हंगामा, विपक्ष का सरकार पर साजिश रचने का आरोप।
मुख्यमंत्री जी गैर जिम्मेदाराना ढंग से इस बात को प्रस्तुत करके अपनी गरिमा को तार तार किए, कथित पीटीएन की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे और क्षमा मांगे।
जानेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी किन्हें बना सकती है मुख्यमंत्री, होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी दूत का कहना है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर यमन से दागी गई मिसाइल से ईरान से मिले हथियारों से हुए हमले के संकेत मिलते हैं। मंगलवार को सऊदी सेना के राजधानी रियाद के ऊपर मिसाइल को मार गिराने के बाद निकी हेली संयुक्त राष्ट्र में बोल रही थीं। हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने शाह सलमान के आधिकारिक निवास को निशाना बनाकर ये मिसाइल दागी थी। इस मिसाइल हमले के बाद जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बीते सप्ताह अमरीका ने कहा था कि उसके पास यमन से सऊदी अरब में ईरान निर्मित मिसाइल दागे जाने के पुख्ता सबूत हैं। यमन में चल रहे गृह युद्ध में सऊदी गठबंधन हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमले कर रहा है। ईरान इन विद्रोहियों का समर्थन करता रहा है। अमरीकी सीनेटर देश की टैक्स व्यवस्था में बीते 3 दशकों के सबसे बड़े सुधार के लिए लाए जा रहे विधेयक पर बहस कर रहे हैं। अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा पहले ही इस सुधारात्मक विधेयक को पारित कर चुकी है। यदि ये विधेयक सीनेट से भी पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति ट्रंप की पहली बड़ी कानूनी उपलब्धि होगी। अगले कुछ घंटों में सीनेट में इस विधेयक पर मतदान हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि टैक्स नियमों में बदलाव से मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचेगा। वहीं विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि ये टैक्स सुधार कॉरपोरेट और अमीरों को राहत देने के लिए लाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स का कहना है कि इस विधेयक से मध्यम वर्ग को फायदा होगा। उन्होंने कहा,
This is a tax plan that we hope benefits all Americans, primarily and priority number one is middle class Americans.
हमें उम्मीद है कि इस टैक्स प्लान से सभी अमरीकियों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता अमरीकी मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाना है। यही इस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य भी है। हमें लगता है कि इस विधेयक में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि इसे पूरा महत्व दिया गया है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये विधेयक कानून बन जाएगा। कनाडा और अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु संकट पर चर्चा के लिए विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। ओटावा में बोलते हुए कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड और अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि अगले महीने वैनकूवर में होने वाली बैठक में जापान और दक्षिण कोरिया के दूत भी शामिल होंगे। बैठक में उत्तर कोरिया पर दबाव की नीति को और प्रभावी कैसे बनाया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा,
What we'll be discussing will be how do we improve the effectiveness of the current pressure campaign.
उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने की मौजूदा अभियान को कैसे सुधारा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। क्या हम उत्तर कोरिया पर अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए और कोई कदम भी उठा सकते हैं, और हम अपनी कूटनीतिक प्रयासों को कैसे आगे बढ़ाएं और वार्ता के लिए कैसे तैयारी करें, इस पर भी विचार किया जाएगा। चीन ने ऊर्जा कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने की योजना जारी की है। देश की करीब 1700 ऊर्जा कंपनियां कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकती हैं, इसकी सीमा तय कर दी जाएगी। इस सीमा के बाद चीन का ऊर्जा बाजार यूरोपीय संघ की तरह नियमित हो जाएगा। बाजार में कंपनियों को परमिट के लेन देन की अनुमति भी होगी। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियमित किया जा सकेगा। पर्यावरण अधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। हालांकि इसे अगले 1 साल तक प्रभाव में नहीं लाया जा सकेगा। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश भी है। इसके अलावा चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया में सबसे बड़ा निवेश भी किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। मंगलवार को यमन के हुथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर रॉकेट से हमला करने का दावा किया। सऊदी अरब ने भी स्वीकार किया है कि उसने एक मिसाइल इंटरसेप्ट की है। सऊदी नेतृत्व पहले से ही कहता रहा है कि हुथी विद्रोहियों को ईरान से हथियार मिल रहे हैं। अब अमेरिका ने भी कहा है कि ताजा हमले में हुथी विद्रोहियों ने जो मिसाइल इस्तेमाल की है वो ईरान में बनी हो सकती है। इस मामले को लेकर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
خبر عاجل وهام جدا القوى الصاروخيه تعلن اطلاق صاروخ بركان
हुती विद्रोहियों के टीवी चैनल अल मसीरा के ये समाचार वाचक सऊदी अरब पर मिसाइल दागे जाने का समाचार देते हुए बता रहे हैं कि हुती मिसाइल फोर्स ने रियाद के अल यमामा महल पर बुरकान 2H बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। सऊदी अरब की राजधानी के अहम सरकारी ठिकाने को निशाना बनाकर दागी गई इस मिसाइल को सऊदी बलों ने हवा में ही मार गिराया। रियाद में एक बड़ा धमाका सुना गया, हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक चश्मदीद टोमास कॉम्पिकान ने बताया,
I was in my office, I heard a big bang. Suddenly, after around 30 to 45 seconds,
मैं अपने दफ्तर में था जब मैंने जोरदार धमाका सुना। इसके करीब 30-35 सेकंड बाद किसी चीज की तेज सनसनाती आवाज सुनी। उसके बाद मैं यहाँ टावर के पास आ गया। बहुत से लोग उस जगह की ओर देख रहे थे जो एयरपोर्ट की ओर है। हम सब ने सफेद धुआं देखा। सऊदी गठबंधन ने ईरान पर हुती विद्रोहियों को ये मिसाइल मुहैया कराने के आरोप लगाए हैं। हालांकि ईरान ने हमेशा की तरह सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमरीका की दूत निकी हेली ने भी मिसाइल हमले के पीछे ईरान के होने के संकेत दिए हैं। निकी हेली ने कहा,
According to the Houthis themselves, it was targeted at a meeting of Saudi leaders in Riyadh, in an area crowded with government offices.
हुतियों ने खुद कहा है कि इस मिसाइल के निशाने पर रियाद में सरकारी इमारतों वाले इलाके में हो रही सऊदी नेताओं की अहम बैठक थी। शुक्र है कि मिसाइल को निर्धारित निशाना भेदने से पहले ही मार गिराया गया, लेकिन ये मिसाइल हमला इस परिषद के लिए चेतावनी संदेश है। हालांकि अभी इस हमले के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन ये इससे पहले ईरान से मिले हथियारों से हुए हमलों जैसा ही है। ये मिसाइल कभी भी निशाने पर लग सकती हैं। ये पहली बार नहीं है जब यमन के हुती विद्रोहियों की दागी कोई मिसाइल सऊदी राजधानी रियाद तक पहुंच गई है। 4 नवंबर को ऐसी ही एक मिसाइल को रियाद एयरपोर्ट को निशाना बनाकर दागा गया था, जिसे हवा में ही मार गिराया गया था। मंगलवार को दागी गई इस मिसाइल के निशाने पर सऊदी सरकार का अहम ठिकाना अल यमामा महल था, जहां हो रही अहम बैठक में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हिस्सा लेने वाले थे। हुती विद्रोहियों का कहना है कि ये मिसाइल यमन के लोगों के खिलाफ अमरीका और सऊदी गठबंधन के अपराधों के जवाब में दागी गई है। वहीं इस मिसाइल हमले के जवाब में सऊदी गठबंधन कड़ी प्रतिक्रिया कर सकता है। सऊदी अरब ने यमन की पहले से ही सख्त नाकेबंदी कर रखी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब गठबंधन के दखल के बाद से 8,670 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 50,000 घायल हुए हैं। लड़ाई और नाकेबंदी की वजह से यमन की एक बड़ी आबादी के सामने खाने पीने के सामान का संकट पैदा हो गया है। यदि सऊदी अरब नाकेबंदी को और कड़ा करता है तो यमन के लोगों को भुखमरी तक का सामना करना पड़ सकता है।
यानी इस घटना के बाद यमन का संकट और गहरा सकता है।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावी नतीजों की। दोनों राज्यों में बीजेपी को कामयाबी तो मिल गई है, लेकिन यहां मुख्यमंत्री कौन होंगे अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल की हार के बाद अब जहां नए नाम की तलाश करनी पड़ रही है, वहीं गुजरात में भी पिछली बार से कम सीटें आने पर मौजूदा मुख्यमंत्री विजय रूपानी का विकल्प ढूंढने की भी चर्चा है। पिछले चुनावों को देखते हुए कुछ विश्लेषक बिल्कुल ही अनजान चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। सुनिए संदीप राय की रिपोर्ट।
हिमाचल और गुजरात के चुनावी नतीजों से भाजपा में खुशी की लहर है। हिमाचल में पार्टी को 44 सीटें जबकि गुजरात में 99 सीटें मिली हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पार्टी ने अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। हिमाचल में पार्टी प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन उनके चुनाव हार जाने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। उनके कई करीबी सहयोगी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, इसलिए उनकी ओर से पार्टी पर दबाव न्यूनतम होगा, ऐसी संभावना है। राज्य में नए चेहरे की तलाश को लेकर वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार कहते हैं,
पहले भी मेहनत इस बात पे थी बीजेपी के भीतर कि चेहरा किसे किया जाए किसे नहीं किया जाए, अंततः वो धूमल जी को कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा उनकी हार के बाद फिर वही कसरत एक बार करनी पड़ रही। दो तीन नाम है जो सबसे आगे, जो जिनका नाम है, जो विधायक जीते हैं उसमें जयराम ठाकुर का लिया जा रहा है, उसके बाद नड्डा जी है, नड्डा जी पे सारा डिपेंड करता है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है कि वो आना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं हिमाचल की पॉलिटिक्स में वापस। इसी के मद्देनजर आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और नरेंद्र तोमर शिमला आ रहे हैं नया चेहरा तलाशने के लिए। तो कहा यह जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि वो औपचारिक कोई विधायक दल की बैठक तो नहीं है, नहीं हो शायद, लेकिन एक एक करके वो सभी की राय लेंगे यहाँ पे जो विधायक चुने गए हैं बीजेपी के।
दूसरी ओर गुजरात में बहुमत से 7 सीटें अधिक जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री विजय रूपानी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर संशय बना हुआ है। यहाँ पार्टी 150 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी थी और पार्टी दहाई अंकों में ही सिमट कर रह गई। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का मानना है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी की रणनीति में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए नेता के चुनाव में पाटीदारों और किसानों के असंतोष और आगामी 2019 के आम चुनाव का असर दिखना लाजमी है। नीरजा चौधरी का कहना है कि भाजपा भले ही गुजरात जीत गई हो, लेकिन आम चुनाव तक किसानों का मुद्दा पार्टी की संभावनाओं पर असर डालता रहेगा। वो कहती हैं,
मुझे लगता है गुजरात में चुनौती है कि काफी सोच और विचार विमर्श हो रहा है किसको बनाया जाए। विजय रूपानी का नाम सामने आ रहा है क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, अमित शाह के बहुत करीब हैं और नरेंद्र मोदी के बाद वही हैं जिनके नेतृत्व में पार्टी जीती। हालांकि मोदी का इलेक्शन था ये और वो पाटीदार नहीं है, वो जैन बनिया है। तो एक व्यू है पार्टी में कि इनको दोबारा कंटिन्यू किया कर जाए और 2019 के लिए बेहतर रहेंगे। पाटीदारों में काफी झंझट है, नितिन पटेल लेवा पटेल हैं, हार्दिक पटेल कड़वा पटेल हैं, लेकिन भाजपा के अंदर लास्ट मिनट से रैबिट आउट ऑफ द हैट भी निकाला गया है। ये उत्तर प्रदेश में हुआ जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने, ये झारखंड में हुआ। तो क्या ये भी हो सकता है कि लास्ट मिनट जो जिसका चेहरा जो आज रेडार पे है ही नहीं वो भाजपा बनाए? मेन कंसिडरेशन होगा 2019 जीतना।
हालांकि इन दोनों राज्यों में विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
अहमदाबाद की नरोदा पाटिया वो बस्ती है जिसे लेकर जिसे घेर कर दंगाइयों की भीड़ ने 28 फरवरी 2002 को लगभग 10 घंटे तक बिना रोक टोक कत्लेआम, आगजनी और बलात्कार किए। इस सांप्रदायिक हिंसा में 97 लोग मारे गए थे। हिंसक भीड़ का नेतृत्व बीजेपी विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के बाबू बजरंगी कर रहे थे। दोनों को इस मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अब जब भारतीय जनता पार्टी 6ठी बार गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, इस बस्ती के बाशिंदों का हाल जानने के लिए बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो संपादक राजेश जोशी नरोदा पाटिया पहुंचे। सुनिए ये बातचीत।
ये अहमदाबाद के पास नरोदा पाटिया बस्ती है। 2002 के दंगों में जिसका काफी जिक्र हुआ था, अखबारों में सुर्खियां छपी थी, टेलीविजन में यहाँ की तस्वीरें नजर आई थी। ये नरोदा पाटिया छोटा मोटा धंधा करने वालों की बस्ती है। कोई ठेला लगाता है, कोई कारखाने में काम करता है, कोई मजदूरी करता है और किसी तरह अपनी गुजर बसर ये लोग करते हैं। एक छोटी सी पतली गली है जिसमें मैं खड़ा हूँ। ये स्कूल है, इकरा प्राथमिक शाला इसका नाम है, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ और इस स्कूल को बनाने वाले जो सज्जन है वो मेरे सामने खड़े हैं। आपका नाम क्या है?
नजीर खान रहीम खान पठान।
नजीर खान रहीम खान पठान, इस स्कूल को क्यों बनाया आपने और 2002 में जो दंगे हुए थे उसके बाद ही क्यों बनाए?
2000 दंगे होने की वजह से यहाँ की जो माइनॉरिटी के बच्चे जो है छोटे छोटे, वो दूसरे स्कूल में पढ़ने जाने से इनकार करने लगे। उन्होंने ये महसूस किया कि हमको लोग मारेंगे, डर लगती है वहाँ जाने में, डर लगती है रास्ते में कोई रुकावट करके हमको मारे ना। बस इसकी वजह से हमने एक ध्येय करा, हमने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर एक स्कूल बना रहे।
मेरे साथ यहाँ पे इसी बस्ती में रहने वाले और भी लोग हैं। एक महिला हैं, खातून, आपका क्या नाम है?
जुलेखा बानू सरदार अहमद चौधरी।
तो जुलेखा साहबा, क्या अब 2002 से तो बहुत बात आगे बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन रही है, 6ठी बार बन रही है, तो अब आप भूल चुकी हैं उस बात को या याद है?
हम तो जब तक हमारी सांस रहेगी जब तक हमें याद रहेगी वो बात, हम कभी भूलेंगे नहीं वो बात को। ये रात दिन हमारे साथ रहने वाले, हमने उनसे इतनी पनाह मांगी तो उन्होंने हमारे को लकड़ियों से डंडों से मार मार के हमें भगाया, बोले यहाँ कोई तुम्हें सहायता नहीं मिलेगी, यहाँ बैठने तक के भी नहीं दे रहे थे।
लेकिन लेकिन ये भी तो बात है कि न्याय तो हुआ ना, जब अदालत में गए लोगों को सजा मिली है तो उससे जख्मों पे फाहा तो रखा गया।
सजा तो जरूर उन्हें मिली है, फिर भी वो पैरल पे छूट रहे हैं, आ रहे हैं, फिर भी हमको, हमारे साथ तो प्रोटेक्शन है, फिर भी हमें कभी कहीं भी कुछ होता है तो हमें इतनी डर लगती है कि फिर कभी वो आरसा यहाँ ना हो जाए।
आपसे बात करूंगा, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम सलीम रोशन अली शेख।
सलीम रोशन अली शेख, तो अब तो 2002 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लोग कहते हैं कि गुजरात के मुसलमान वो सब भूल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए उनको, कब तक वो 2002 के जख्मों को सहलाते रहेंगे?
2002 के जख्मों को तो मरते दम तक हम नहीं भूल सकते, क्योंकि जो घटना हमारे सामने हुई है और जो मंजर हमने देखा है, हमारा नौजवान लड़का 27 साल का हमारे सामने शहीद कर दिया, हमने अपनी नजरों से देखा है, वो मंजर हम कैसे भूल सकते हैं। और उस आरोपी को, 5 के 6 आरोपी थे, उनको सजा भी मिली है उनके अंदर उसको, लेकिन जो सजा मिलनी चाहिए बहुत कम है। उनको 35-60 आदमियों का आरोपी के नाम थे, उसमें 32 आदमी को सजा मिली और 30 आदमी निर्दोष तो छूट गए। तो आज हमारा नौजवान 27 साल का लड़का हमारी नजरों के सामने उन्होंने शहीद कर दिया, पानी की टांकी के पास, गंगोत्री के पास, और हमने अपनी नजरों से देखा ये मंजर, हाथ में एक तलवार, ये छोटी रिवॉल्वर, ऐसे ऐसे लोग हमारे नजरों के सामने पाइप मार के हमारे लड़के को गिरा दिया, वो हमने नजरों अपने मंजर देखो, मंजर हम कैसे भूल सकते हैं।
अच्छा, यहाँ जो स्कूल है और स्कूल के बगल में मस्जिद भी है, ये स्कूल में आप क्या क्या पढ़ाते हैं? क्योंकि जो अब नस्ल है, बच्चे जो हैं, कभी वो पूछते हैं बच्चे के पुरानी कहानियाँ पूछते हैं कि क्या हुआ था, क्या उनको घरों में बताते होंगे ना कि 2002 में क्या हुआ?
उनको बताते हैं कि हम जो उन्होंने किया वो हम नहीं करेंगे, जो उन्होंने किया इंसा को इंसा के सामने हम इंसा नहीं करेंगे, हम लोगों को माफ करके भी अहिंसा का पात्र हम इनको बनाते हैं, कि हमको ऐसा काम नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है बिन सांप्रदाय के, हम बच्चे आगे आने वाली नस्ल को ये हिंदू के प्रति नफरत ना होनी चाहिए, हम एक दूसरे को मिलकर भाईचारे से रहे और गले मिले, मैं ये चाहता हूँ। इसी तरह से मैं बच्चों को भी यही आदेश करता हूँ।
जख्म तो जाहिर है नहीं भरे हैं इनके, लेकिन जिंदगी जीने की जिजीविषा इनके अंदर है और उसी के सहारे ये अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है कि अब खुश भी हैं थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आदमी हमेशा गमजदा हो।
ऊपर वाले के साथ जी रहे हैं तो खुश तो रहना पड़ेगा, कब तक हम वो लेके बैठेंगे? खुश तो है, फिर भी कहीं भी कुछ होता है तो हमें बहुत जल्दी वो दिन आ जाता है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में पिछले सत्र में पाए गए कथित विस्फोटक को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खुद ये साजिश रची थी। इस बीच सरकार की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट में धार्मिक स्थलों के रखरखाव और उनके विकास पर बड़ी राशि खर्च करने को लेकर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
करीब 5 महीने पहले विधानसभा सत्र के दौरान मिले कथित विस्फोटक ने विधानसभा में एक बार फिर गर्मी ला दी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस मामले में न सिर्फ गलत बयानी की है बल्कि षड्यंत्र में खुद शामिल है। समाजवादी पार्टी के विधायक सुनील साजन कहते हैं,
मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर इसकी CBI जाँच हो जाए तो सरकार ही घेरे में आ जाएगी कि वो पाउडर कैसे गया और ये जानबूझ के ले जाया गया केवल गुमराह करने के लिए।
गत 12 जुलाई को विधानसभा भवन में विधायकों की सीट के नीचे मिले एक सफेद पाउडर से हड़कंप मच गया था। आनन फानन में लखनऊ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उसे जांच के लिए भेजा गया और जांच रिपोर्ट में उसे PETN नाम का घातक विस्फोटक बताया गया। अगले ही दिन सदन में खुद मुख्यमंत्री ने इसके पीछे गहरी साजिश बताई।
यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है और इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि जो भी कर्मी यहाँ पर कार्यरत हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो जाए।
लेकिन बाद में आगरा की फॉरेंसिक लैब ने PETN होने संबंधी बात को गलत बताया, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। विपक्षी दलों की मांग है कि आगरा और हैदराबाद की जो रिपोर्ट जांच एजेंसी एनआईए ने सरकार को दी है वो सदन में रखी जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू कहते हैं,
बिना किसी फॉरेंसिक जांच के मुख्यमंत्री का इस तरह बयान दे देना विस्फोटक सामान के प्रति, सदन के सारे लोगों को कटघरे में खड़ा कर देना, विधानसभा की गरिमा को तार तार कर देना, विधायकों की जांच कराना, उनके सुरक्षा कर्मियों की जांच कराना, मुख्यमंत्री जी गैर जिम्मेदाराना ढंग से इस बात को प्रस्तुत करके अपनी गरिमा को तार तार किए कथित पीटीएन की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से और विधायकों से वो क्षमा मांगे।
इसके अलावा विपक्ष ने सरकार के अनुपूरक बजट में हिंदू तीर्थ स्थानों के विकास के नाम पर धन के आवंटन पर सवाल उठाए हैं। अनुपूरक बजट में वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रास्तों, कैलाश मानसरोवर भवन, चित्रकूट में रामघाट का विकास और गोरखपुर में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए धन आवंटन की खास व्यवस्था की गई है। विपक्ष का कहना है कि इन स्थानों के विकास को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार एक खास एजेंडे के तहत ऐसा कर रही है। कांग्रेस की युवा विधायक अदिति सिंह का कहना है,
जो भी आप लोगों ने इसका आवंटन किया, ये सारे जो हिंदू स्थान है वहाँ किया गया, और चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो, चाहे वो किसी, हम लोग मस्जिद की बात कर रहे हैं, किसी और धर्म की मजार हो चाहे जो भी हो, तो बेशक उसके लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया और इस पे क्वेश्चन मार्क उठता है। कहते हैं आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, फंड आवंटन की बात आती है या नीतियों की बात आती है, योजनाओं की बात आती है, तो तब ये सारी चीजें क्यों नहीं।
बहरहाल पिछले चार दिन की कार्यवाही बाधित होने के बावजूद ऐसा लगता नहीं कि सदन में हंगामे में कोई कमी आएगी। जानकारों के मुताबिक पहले से चल रहे मुद्दे तो छाए ही रहेंगे, सरकार की ओर से प्रस्तावित यूपी कोका जैसे विधेयक हंगामे को बढ़ाएंगे ही, कम नहीं होने देंगे। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में सारे अखबार मान चुके हैं, क्या खास मिला आपको आज?
दिल्ली की नई नवेली मेट्रो स्टेशन की दीवार तोड़कर बाहर आ गई और ये तस्वीर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दरअसल मेट्रो की नई लाइन का ट्रायल रन हो रहा था, ये स्वचालित ट्रेन थी, ड्राइवर के बिना चल रही थी। इस लाइन का 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। उससे पहले हुई इस घटना ने सुरक्षा के कई सवाल खड़े कर दिए हैं
जी।
इसके अलावा एक और खबर लगभग सभी अखबारों में है, वो ये है कि संपत्ति की खरीद बिक्री में आधार अनिवार्य नहीं होगा। आधार को लेकर तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। इस बीच ये खबर आई है कि अफवाह कई दिनों से चल रही थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग लिख रहे थे कि अब संपत्ति खरीदने के लिए भी आधार देना अनिवार्य होगा। अखबार बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर भी GST लगाने पर विचार कर रही है। ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमरीका ने भारत को बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति माना है और पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने परमाणु हथियारों के प्रति जिम्मेदार हो। अमरीका ने अपनी नई सुरक्षा नीति जारी की है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू समेत कई अखबारों के पहले पन्ने पर आज ये खबर है
जी।
इसके अलावा जिक्र दिल्ली में हुए एक लूटकांड का, यहाँ गैस कटर से बैंक का लॉकर काटकर करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास की राशि जो है चोरी कर ली गई है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी का वो बयान भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, जिसमें कल उन्होंने कहा था कि गुजरात के नतीजे बीजेपी के लिए झटका है। ये अलग बात है कि गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ही जीता है।
शुक्रिया दिलनवाज। 80 वर्षीय जुलेखा दाऊद संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल की पहली महिला डॉक्टर हैं। 50 साल पहले वो वहाँ गई थी, लेकिन हमेशा के लिए वहीं की होकर रह गई। इसके बावजूद वो ना तो अपने देश को भूली हैं और ना अपने शहर को। आज भी वो हिंदी और मराठी अंदाज में बोलती हैं। उनका पासपोर्ट भी हिंदुस्तानी है। कैसा रहा उनका सफरनामा, सुनिए जुबैर अहमद की रिपोर्ट में।
जुलेखा दाऊद संयुक्त अरब इमारात की पहली महिला डॉक्टर हैं। 80 वर्षीय दाऊद आज यहाँ की एक जानी मानी हस्ती हैं, लेकिन सालों पहले वो यहाँ एक गुमनाम युवा डॉक्टर की हैसियत से आई थी। दाऊद को पहले कुवैत में एक अमरीकी मिशनरी अस्पताल में नौकरी मिली।
मैं नागपुर से यहाँ इस ऐसे आई कि मुझे मिला, कुवैत में जॉब मिला। मुझे कुवैत वालों ने कहा कि भाई इन लोग को ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग वहाँ अस्पताल खोल रहे हैं कुवैत वाले, तो उन्होंने मुझे भेजा यहाँ। मुझे नहीं मालूम था दुबई कौन सी चीज़ है, वैसे काम करना था तो मैं आ गई। दूसरे मुल्कों के डॉक्टर्स भी थे, सीरिया, बेरूत, उन लोग इतने परेशान हो गए जब आए यहाँ, क्योंकि एयरपोर्ट नहीं था, रनवे पर हम उतरे, इतनी गर्मी थी और सबने कहा नहीं हमको यहाँ नहीं काम करना। उन्होंने पहले दुबई में एक छोटी सी हॉस्पिटल लगाई, जब वो हॉस्पिटल में मैं काम करने लगी तो फिर उन्होंने कहा कि हमको शारजा में भी होना, दुबई से तकरीबन 12 किलोमीटर है, तो शारजा तो कोई हिसाब से उन लोग आना नहीं चाहते थे। मैंने कहा अच्छा मैं आई हूँ काम करके जाऊँगी।
उनकी तरक्की अमीरात के विकास से जुड़ी थी।
जैसे जैसे टाइम बीत गया उन लोग को इंडिपेंडेंस मिला, उनका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना, ब्रिटिशर्स के वक्त कुछ भी नहीं था। जब 71 में उनको अपनी इंडिपेंडेंस मिला तो फिर एक साथ इन लोग ने प्रोग्रेस करना शुरू किया।
आज उनके 3 अस्पताल हैं, एक अपने शहर नागपुर में। क्या उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद थी?
पहले से मुझे ये नहीं समझ में आई कि मैं आगे बढ़ूंगी, पर मैंने हालात और समय उसको देखकर मैं करती गई। लोगों को मदद करने के जज्बा मेरे को बहुत था, वो आते थे मेरे पास तो मुझे उन्होंने ही काम किया करने लगाया।
अमीरात ने उन्हें एक पहचान दी, कामयाबी दी, लेकिन 55 साल बाद भी उनका पासपोर्ट भारतीय है। क्या वो भारत वापस लौटना नहीं चाहेंगी?
मुझे अपने देश की लाजमी है कि उन्होंने मुझे इतना सब दिया, एजुकेशन दिया, तो हमको भी कुछ करना चाहिए उनके लिए। आप क्या बोलेंगे? मैं पैदा तो वहीं हुई ना, लोग तो मेरे वहीं हैं।
यूं तो वो भारत लौटना नहीं चाहती, लेकिन उनके अनुसार उनका आना जाना लगा रहता है। वो कहती हैं उनके 2 देश हैं, एक अमीरात और दूसरा भारत। जुबैर अहमद, BBC शारजा।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। ब्राजील के विश्व विजेता टीम के सदस्य काका ने फुटबॉल से संन्यास की अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने साथ में ये भी संकेत दिए हैं कि वो अपने पूर्व क्लब एसी मिलान में मैनेजर की भूमिका भी निभा सकते हैं। काका ने ब्राजील के लिए 92 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 29 गोल किए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने से महिलाओं की स्पर्धा में निशानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। नए नियम 1 जनवरी 2018 से लागू होंगे और 2020 टोक्यो ओलंपिक तक जारी रहेंगे। नए बदलाव के मुताबिक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल स्पर्धा में निशानों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 60 किया जाएगा। महिलाओं की 50 मीटर और 300 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में निशानों की संख्या 3 गुना, जो कि 20 से बढ़ाकर 60 और 40 से 120 कर दिया गया है। उनके मुताबिक महिला ट्रैप और स्टिक स्पर्धा में पहले के 75 के मुकाबले अब 125 निशाने लगाने होंगे। इसी तरह महिलाओं की रनिंग टारगेट स्पर्धा में निशानों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। ये सभी नियम महिलाओं की जूनियर स्पर्धा में भी लागू होंगे। ये बदलाव 2018 से ISSF की सभी चैंपियनशिप, जिसमें विश्व कप जूनियर, विश्व कप, महाद्वीपीय चैंपियनशिप और कोरिया में होने वाली विश्व चैंपियनशिप भी शामिल है। और क्रिकेट में टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
और विदा लेने से पहले मुख्य समाचार।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत का कहना है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर यमन से दागी गई मिसाइल से ईरान से मिले हथियारों से हुए हमले के संकेत मिलते हैं। अमेरिकी सीनेटर देश की टैक्स व्यवस्था में बीते 3 दशकों के सबसे बड़े सुधार के लिए लाए जा रहे विधेयक पर बहस कर रहे हैं। कनाडा और अमरीका ने उत्तर कोरिया के परमाणु संकट पर चर्चा के लिए विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। चीन ने ऊर्जा कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने की योजना जारी की है। देश की करीब 1700 ऊर्जा कंपनियां कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकती हैं, इसकी सीमा तय कर दी जाएगी। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।